इतनी भी इतनी है सात क्षणों में, इतनी सर्दी में आप इतने दूर दूर से आते हैं, आपकी श्रद्धा प्रीति के परिचारक, भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। व्यापारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सब तरह के साधक हैं, कोई पास से भी आते हैं तो कोई 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी से, 25-25 किलोमीटर की दूरी से भी आते हैं। बहुत ठंड है, धुंध भी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप पधारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा आपके इस आगमन को, सत्संगति को तपस्या से कम तो नहीं मानता। तप तप रहे हैं आप। कल से साधक सुनो, जाप का दिन है कल, जैसी विद्या अस्थि भाव की होगी उसके बाद मैं राम लंबा करके बोलूंगा तो समझ लीजिएगा शेष समय ध्यान के लिए बैठेंगे। ये कल से शुरू करेंगे। जिन दिनों भक्ति प्रकाश का पाठ होगा उन दिनों भक्ति प्रकाश पाठ के बाद 3 दिन सप्ताह में कुछ शब्द आपकी सेवा में कह दिए जाएंगे, शेष 3 दिन ध्यान में बैठा करेंगे। जिस दिन जाप होगा स्पष्ट है उस दिन समय अधिक मिल जाएगा, बाकी दिन जिस दिन भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा या गीता जी का पाठ होगा ये सिलसिला छोड़िएगा मत। काश मेरी माताओं सज्जनों आप ध्यान की महत्ता को, उसके महत्व को समझ सकते, इसमें कोई शक नहीं। आप श्री राम शरणम पधारने का नियम तो निभाते हैं, संभवतः जितना अधिक नियम निभाते हैं उतना कम नियम ध्यान का निभाते हैं आप। बहुत से साधक से नियम पूर्वक श्री राम शरणम आने वाले हैं वे भी तो समय ध्यान के लिए नहीं बैठते, समय निश्चित नहीं है, बैठते भी हैं तो निश्चित समय निश्चित स्थान जैसे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं वैसा नहीं है। मेहरबानी करके कम से कम इतने दिन यहां तो ध्यान में बैठ सकेंगे आप। कल से ये शुरू करेंगे, छोड़िएगा नहीं इसे। जिन दिनों मैं यहां हूं उन दिनों तो होगा ही होगा, शेष दिन जो भी कोई अमृतवाणी पाठ के बाद पाठ चल रहा है चलता रहेगा। पर जिन दिनों मैं हूं यहां पर उन दिनों 3 दिन के लिए सप्ताह में ध्यान हुआ करेगा, 3 दिन कोई शब्द आपकी सेवा में अर्ज किए जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का कथन है, फरमाते हैं साधक सुनो, ध्यान का महत्व झुठलाया नहीं जा सकता। क्यों? परमेश्वर की दया का द्वार जब भी किसी पर खुलता है तो वह ध्यान में खुलता है। संभवतः आप इन बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर की कृपा से जो भी कुछ किसी साधु को मिलता है वह ध्यान अवस्था में मिलता है, जब से नहीं, जब काल में नहीं। हाँ, जब काल आपका ध्यान अवस्था में परिणित हो गया दूसरी बात है, लेकिन परमात्मा से कुछ पाने के लिए आपको ध्यानस्थ ही होना होगा। ध्यानस्थ अर्थात स्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं ध्यान हमारे लिए योगाभ्यास नहीं है, न ही प्राणायाम, न ही साधारण व्यायाम। ध्यान हमारे लिए बहुत उच्च चीज है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस प्रकार दीक्षा के वक्त मैं आपकी तार परमात्मा से जोड़ता हूं, ध्यान के समय आप अपनी तार परमात्मा के साथ जोड़कर रखा कीजिएगा। ये ध्यान है स्वामी जी महाराज की दृष्टि में। इसकी तार बिजली से जुड़ी है, इसमें बिजली का प्रवाह हो रहा है। आपकी तार परमात्मा से जुड़ेगी तो आपके अंदर परमात्मा की कृपा का प्रवाह, उनके प्यार का प्रवाह, उनकी दया का प्रवाह क्यों नहीं होगा? यदि नहीं हो रहा, आपको ऐसा अनुभव नहीं होता, तो यही कहना होगा कि तार से जुड़ी नहीं हुई है। कल से देवी सचनी ये शुरू किया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन ध्यान के लिए बैठा करेंगे। जिस सप्ताह 2 जाप होंगे उस दिन तो बहुत ही अच्छा है, वह सप्ताह तो बहुत ही अच्छा होगा। उस सप्ताह समय अधिक मिल जाएगा ध्यान में बैठने के लिए। कोशिश करेंगे ये सज्जनों, जैसे 15 मिनट 12 मिनट 10 मिनट अभी छोड़ते हैं, ध्यान के लिए भी छोड़ दें। भक्ति प्रकाश पढ़ने वाले, गीता जी पढ़ने वालों से निवेदन है, कम से कम जिन दिनों में यहां हो। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, कल से शुरू करेंगे। आज स्वामी जी महाराज ने मुद्गल मुनि का प्रसंग लिया है। कुछ भी कहना शेष नहीं है। स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने कहानी इस प्रकार से शुरू की है। युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया था, उस यज्ञ में इतनी संतुष्टि नहीं मिली किसी जीव को। अतएव युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है महर्षि व्यासदेव से, कौन है ऐसा जिसके दान से, जिसके यज्ञ से, जिसकी तपस्या से इस जीव को तुष्टि मिली है, मेरे यज्ञ करने से इसको तुष्टि नहीं मिली। महर्षि व्यासदेव इस सारी कथा सुनाते हैं जो आज आपने पढ़ी है। किसी किसी स्थान पर देवी सचनों पहले की बातें छोड़ते हैं, अब क्या होता है इसके बाद। दुर्वासा ऋषि जो आया हुआ था, प्रसिद्ध है, कुप्रसिद्ध है शाप देने में। वह हरि को क्रोधी ऋषि माना जाता है। दुर्वासा ऋषि हरि को शाप ही देते हैं। आज जो कुछ मुद्गल मुनि ने किया है, इतने प्रभावित हुए हैं कि शाप नहीं दिया, वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? आप सशरीर स्वर्ग में जाओ, देवलोक से आपको लोग लेने के लिए आएंगे। लखपति कोई 2 व्यक्तियों को खाना खिला देता है तो परमात्मा की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में हो सकता है उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में इट्स सो इनसिग्निफिकेंट। भूखा किसी भूखे को खाना खिलाता है तो सदक्षिणों परमात्मा के हृदय में उसके लिए कितना सम्मान होगा वह परमात्मा जानता है। वह प्रसाद के रूप में तत्काल उसे शांति से मालामाल कर देता है, उसे आनंद से मालामाल कर देता है। परमात्मा का प्रसाद, आनंद की अनुभूति। परमात्मा का प्रसाद कड़ा प्रसाद नहीं, या चूरा इत्यादि, लड्डू इत्यादि नहीं। परमात्मा का प्रसाद आनंद, तृप्ति। भगवान श्री गीता जी में अर्जुन को जो प्रसाद देते हैं वह प्रसाद, कोई केला खाने को नहीं दिया, आपके प्रसाद से माधव, जो कुछ मैं भूला हुआ था मैंने स्मृति मेरी वापस आ गई है, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। जो आनंद आपने मुझे दिया है, जो तृप्ति जो संतुष्टि आप मुझे दी है, जो मेरी अज्ञानता का अंधकार आपने दूर किया है, ये परमात्मा का प्रसाद है। आज देवलोक से देवदूत आए हैं मुद्गल मुनि को ले जाने के लिए। मुद्गल मुनि का दान मात्र दान नहीं है, इसके पीछे जो उसकी तपस्या है उसका बहुत महत्व है। तो महत्व दान का नहीं रहता, महत्व उसके पीछे जो तप है, जो तपस्या है उसका रहता है। स्वामी जी महाराज ने तो लिखा है, जंगल में जाके कंदमूल इत्यादि वो लेके आया करते, खाया करते, दान दिया करते। अतिथि के लिए एक भाग रखना तो नियम था उनका, उसमें से यज्ञ भी किया करते थे पुद्गल मुनि। जो कुछ मिलता था उसमें से यज्ञ भी किया करते थे और कहते थे, इतना महान तपस्वी, इतना महान दानी इंद्र साक्षात प्रकट हुआ करते थे, उसका दान लेने के लिए, अपना भाग लेने के लिए, देवता का भाग लेने के लिए साक्षात प्रकट हुआ करते थे। आज उनके पास देवदूत आए हैं। चलिए महाराज, आप सशरीर देवलोक में, इंद्रलोक में पधारिए। क्यों ले जा रहे हो मुझे, मुद्गल मुनि ने पूछा है। आप अधिकारी हैं, ऐसा हमें आदेश मिला है, इस महात्मा को सशरीर देवलोक में ले आओ। तपोबल देखी, जाने से इनकार कर दिया। मेहरबानी करके मुझे वहां के गुण और दोष बताइएगा, तब मैं सोच विचार करूंगा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं कि नहीं जाना चाहता। गुण वर्णन करते, देवलोक में ये होता है, वो होता है, इत्यादि 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 बहुत गुण वर्णन किए। गुण तो मैंने सुन लिए, कोई दोष भी तो होंगे, मैं बताइएगा। कहा महात्मन, पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति स्वर्गलोक देवलोक, जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे पुनः संसार में भेज दिए जाओगे। जितना जेब में पैसा है खर्च हुआ वापस, उसके आगे आप वहां रह नहीं सकोगे। अपने नए कर्म, सत्कर्म, नए पुण्य इत्यादि आप वहां कमा नहीं सकोगे। आप जप पाठ वहां नहीं कर सकोगे, आप अपने पुण्यों में और एडिशन वहां नहीं कर सकोगे, ये वहां का नियम है। मुद्गल मुनि तत्काल कहते हैं, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, मैं यहीं संसार में ठहरूंगा जहां मैं तपस्या कर सकता हूं, अपना जीवन, अपनी प्रारब्ध, अपना सब कुछ बदल सकता हूं, पुण्य अर्जित करूंगा और अधिक अर्जित करूंगा, और मैं स्वर्गलोक न जाके तो मैं परमधाम को प्राप्त होऊंगा, मैं परमात्मा के घर जाके रहूंगा, देवों के घर में नहीं। ऐसे महान हुए हैं मुद्गल मुनि, देवलोक से आए हुए देवदूत निराश लौटे हैं, चरण धूलि लेकर। वह महात्मन, पहला व्यक्ति ऐसा देखा है जो हमारे साथ जाने का इनकार कर रहा है। लोग तरसते हैं, पुण्य की कमाई करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यहाँ जप तप की बात नहीं है देवी, ये जो आम मामूली से पुण्य होते हैं उनकी बात है, ये मामूली से पुण्य ही है, कोई बहुत बड़े नहीं है। जो व्यक्ति जो कुछ दान करता है अगले जन्म में लगभग वही उसे लौट के मिलता है। दान करते वक्त सोचो क्या दान कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। साहूकार जो दान देते अगले जन्म में भी साहूकार बनते हैं, वही दान किया हुआ है कीजिएगा। एक सेठ का नियम था 40 किलो अन्न रोज दान करके तो जलपान करना, नियम निभ रहा है। एक नियम हो जाए तो फिर नियम ही रह जाता है, उसमें श्रद्धा नहीं रहती। श्राम शरण आना नियम न बनाइएगा, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आइएगा, सत्संगति के लिए आइएगा। वहां जाना हमारा कर्तव्य है, परमात्मा के श्री चरणों में उसके दिए किए का धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं, उसकी कृपा के पात्र बनने के लिए जा रहे हैं, उसका प्यार का पात्र बनने के लिए जा रहे हैं, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं। मात्र नियम नहीं बनाइएगा इसे, इसका नियम बना हुआ है। बहु आई है घर में, सुशील है, राम राम जपने वाली है। देखा ससुरदान तो देते हैं लेकिन भाव चाव अच्छा नहीं है, कभी कभी तिरस्कार भी करते हैं। दान तो देते हैं 40 किलो रोज अन्न दान करने के बाद कुछ खाते पीते हैं, लेकिन तिरस्कार भी करते हैं, श्रद्धा नहीं है। मानो पंडित को कहा कि पूजा कर जाया कर, चरणामृत जिस वक्त हो मुझे दे जाया कर, मानो किसी से पूजा है। ऐसे होते हैं, मत सोचिए कि ऐसे नहीं है, ऐसे हैं लोग अभी भी इस तो ऐसा ही करते हैं। बहुरानी भी थोड़ा सा अन्न लेके श्रद्धापूर्वक उसी को अपने हाथ से पीसती है, कूटती है, रोटी बनाती है और भगवत भाव से किसी एक को खिला देती है, उसका भी नियम है। दोनों की मृत्यु हो जाती है। बहरानी एक रोटी रोज के पुण्य से राजघराने में राजकुमारी उत्पन्न होती है, पैदा होती है, और वह 40 किलो अन्नदान देने वाला रोज उसी राजा के घर में हाथी बनता है। राजकुमारी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई है, वह हाथी भी दहेज में दिया जा रहा है, राजा साहब ने उसे भी दहेज में दे दिया है। बच्ची को उस हाथी पर बिठाया गया। संयोग की बात देखिएगा, देव योग से उस हाथी को अपना पिछला जन्म याद आ गया, तो मेरी बहुरानी है और मैं इसका ससुर, मैं इसे अपनी पीठ पर नहीं बिठाऊंगा, आगे चलने से इनकार कर दिया। परमेश्वर की करनी बहुरानी को भी अपना पिछला जन्म याद आया, कहा ससुर जी हठ मत कीजिएगा, अपनी ये आदत गंदी छोड़िएगा। 40 किलो दान किया करते थे तो 40 किलो खाने वाला शरीर आपको मिल गया, मैं एक रोटी दान करती थी सब प्रेम श्रद्धा पूर्वक मुझे राजकुमारी का जन्म मिला है, एक पाव खाने वाली, एक रोटी खाने वाली। जो आदमी दान करता है देवी सज्जनों, वही मिलता है। नाम जपो, दान का क्रम याद रखो, जिस वस्तु का त्याग पहले उसका त्याग, वस्तु के साथ जो आपकी ममता है उसका त्याग। मैं दान देने वाला हूं, मैं त्याग करने वाला हूं, इस मैं का त्याग तो दान पूरा होगा, तो दान दान नहीं रहता, तो दान बहुत उच्च श्रेणी में चला जाता है। इस क्रम को याद रखिएगा, वस्तु का दान, उसके बाद उसके साथ जो ममता है उसका दान कीजिए। मैं करने वाला हूं, इस मैं का दान कीजिए, तो दान आपका पूर्ण होगा। तब इतना सा दिया हुआ भी परमात्मा के घर में इतना लगेगा। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।